ओम शांति। आज 1 जनवरी 2025 नए वर्ष की सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज की पहली मुरली है जिसको हम रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ेंगे, सुनेंगे और मंथन करेंगे। जिसको हम रोजाना मंथन करते हैं, इस मुरली मंथन में आप भी साथी वासयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप जुड़ सकते हैं रोजाना सवेरे भी शाम को भी। और इसी के साथ आप जुड़ सकेंगे शाम को जो हमने मुरली प्रश्न उत्तर पर मंथन शुरू किया है, कौन बनेगा पद्मा पद्मपति, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए भी एक ही लिंक है। और यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है, आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, तो आप सामने इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले, ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो, तुम्हें धारणा करनी और करानी है। ज्ञान की बरसात करनी है, वहां दुनिया पानी की बरसात होती है तो खेतों में हरियाली हो जाती है, और हमने कौन सी बरसात करनी है, ज्ञान की बरसात करनी। ज्ञान की बरसात से बाबा करते हैं हम आत्माओं के ऊपर, हमने वो भरकर जाना है और जाकर सर्व आत्माओं को ज्ञान की बरसात करानी है और उनके जीवन में खुशियां आ जाए। हरियाली आना माना खुशियां आना, उनके जीवन में ऑटोमेटिक खुशियां आ जाएंगी। तो हमें उन खुशियों को लाना है ताकि उनके जीवन में भी सुख शांति आए, ये हमने सबको अनुभव कराना है। और सच्ची बरसात आत्माओं के लिए तो यही है, उससे तो देह की जरूरतें पूरी हो सकती हैं, वो देह की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ सुख देने के साथ साथ दुख भी दे सकती है। वो बरसात बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए या कम हो या ना हो, तो दोनों प्रकार से ही वो हानिकारक हो सकती है, परंतु ये ज्ञान की बरसात तो जितना भी बरसेगी उतना ही सुख देगी, इसमें कोई भी बाढ़ आने वाली बात नहीं है, इसमें जीवन में उतना ही ज्यादा खुशियां होंगी, क्योंकि ये एक क्या है, मर्यादित बरसात है। इसको मर्यादित बरसात क्यों कहेंगे, मर्यादित बरसात क्यों कहेंगे इसको, इसको मर्यादित बरसात इसलिए कहते हैं ड्रामा के नियम से इसमें कुछ भी बाहर नहीं हो सकता, जो कुछ भी होगा वो ड्रामा के नियम अनुसार होगा। इसमें चाहे परमात्मा हो, चाहे कोई आत्मा हो, चाहे वो चैतन्य हो, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो जंगम हो, तीन ही कैटेगरीज में इसको हमने समझ लिया है, जड़ जंगम और चैतन्य। तो इन तीनों कैटेगरीज में कोई भी है वो ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट बजाता है, इसके लिए जो लॉ है, जो नियम है, वो उसी के अनुसार ही चलते हैं। इस संसार के अंदर बाढ़ भी आती है तो वो भी लॉ के अधीन आती है, भूकंप आता है तो वो भी लॉ के अधीन आता है, परंतु उस लॉ को ना जानने के कारण हम दोष लगाते हैं। आप परमपिता परमात्मा आकर लॉ नियम बता रहे हैं, इसलिए मेरे को जो टच किया था कि हम गॉड्स के लॉ परमात्मा के नियम वो हम बनाए, परंतु ये भी अच्छा है जो दूसरा सीरियल बना है, टॉपिक बना है कि हम परमात्मा के नियम बताएं, वो भी वो बनाएंगे तो उसको भी हम करेंगे। पहले जो शुरू किया है ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है कि हम परमात्मा के नियमों पर चलकर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हैं, और ये सबको बनना है और परमात्मा के नियमों पर सबको चलना है। कोई भी ऐसी आत्मा नहीं हो सकती, कोई भी ऐसी जड़ या जंगम भी नहीं हो सकता कि जो परमात्मा के नियम पर ना चले। तो पता हो तो दुख नहीं होता। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि परमात्मा के हम नियमों को बहुत अच्छी तरह से समझते जा रहे हैं, जिससे हमारे बुद्धि से संशय ऑटोमेटिक क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, जो संशय हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था। इसलिए बाबा ने हमें बहुत अच्छी युक्ति काली परसों की मुरली में आया था कि संशय दूर हो जाते हैं, रोजाना मुरली पढ़ते रहें तो आपके संशय खत्म होते जाएंगे। तो ये बाबा की मुरली है जो हमारे सारे संशय खत्म करती है। प्रश्न, जो बादल बरसते नहीं है उन्हें कौन सा नाम देंगे? हैं तो बादल परंतु बरसते नहीं। बरसते भी नहीं, जो बाकी सारे गरजने वाले बरसते नहीं है, परंतु वे है सुस्त बादल। ये बरसात अलग है, ये है हम आत्माओं के द्वारा होने वाली ज्ञान बरसात। हम बाबा से तो भरकर लेकर आ जाते हैं, मधु बन गए, सेंटर पर गए, मुरली सुनी, मुरली पढ़ी, मुरली का मंथन किया, हमने भारत तो लिया परंतु बरसते नहीं। हमने ज्ञान सागर का ज्ञान अपने में भर तो लिया, ज्ञान नदी तो तब होगी ना जब बहेगी, ज्ञान बादल तो तब होगा जब बरसेगा। वो किस बात की नदी जिसका पानी आगे चले ही ना, वो क्या होगा? वो तो टिमका होगा, जोर होगा, ठीक है ना? पानी बहेगा तब तो नदी है ना, जो बहे ही ना वो तो क्या है? बाबा कहते टिमका या जोहर, जो वहीं का वहीं थोड़ा सा पानी लेके खड़ा रहता है। जिसका पानी ओवरफ्लो करेगा, भरेगा, अच्छी तरह से मंथन करेगा, बढ़ाएगा ज्ञान को, तब तो वो बरसेगा। पुष्ट वे जो बरसते हैं। अगर धारणा हो, यदि उसने ज्ञान को लिया और ज्ञान को अपने में धारण किया, ठीक है, तब तो वो बरसेगा। अब उसने ज्ञान का धारण किया ही नहीं, ज्ञान को अपने जीवन में लाया ही नहीं, वो फिर किसी को देगा कैसे? ना वो वाचा से दे सकता है, ना वो कर्मणा से दे सकता है, और ना वो मनसा से दे सकता है। थोड़ा सा है उसके पास, क्योंकि उसको बढ़ाना होता है, और बढ़ाने का तरीका क्या होता है? पहला है मन मना भाव, दूसरा है बांटो। जितना आपको बांटने से खुशी मिलेगी उतना आपके अंदर उमंग उत्साह बांटने का बढ़ता जाएगा। यदि आपको ही स्पष्ट नहीं है तो आप बांटेंगे कैसे? आप बांटेंगे क्यों? जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते उनका पेट पीठ मिल जाते हैं, पेट पीठ से लग जाता है। किसका पेट पीठ से लगता है भाई? जिसके पेट में कुछ खाना ही नहीं गया कई दिनों से, भूखा है उसने, हाँ भूखा है उसने, भरा ही नहीं, कुछ खाना लिया ही नहीं, कहीं से मिला ही नहीं उसको।
गरीब के लिए क्यों कहते हैं?
गरीब के लिए क्यों कहते हैं? पेट और पेट किसका मिलेगा? जिसको खाना, जिसने ओवरफ्लो कर रखा होगा, पेट तो फुला पड़ा होगा ना, ओवर ईटिंग कर रखी होगी, और खाया नहीं बेचारे में, तो उसका क्या होगा? पेट में कुछ भोजन है ही नहीं, तो आंते ही खाली होती जाएंगी, आते सिकुड़ती जाएंगी। तो मतलब इसलिए गुरु, क्योंकि जो उसका तो पेट फूला पड़ा है, भरा पड़ा है, अब भरा पड़ा है नहीं देता, वो तो बीमार है, वो तो बीमार है ना। तो मतलब कहने का मतलब गरीब इसलिए कहा कि उसके पास है ही नहीं, दे तो कहां से दे, उसने ज्ञान लिया ही नहीं है, वो तो गरीब है। गरीब तो वही है ना जिसके पास इतना बड़ा खजाना में से कुछ भी नहीं हो, तो दे, प्रजा में चले जाते हैं, वो फिर कहां जाएंगे बेचारे, प्रजा भी पता नहीं कहां की जाएंगे, क्योंकि ज्ञान सुनाएंगे नहीं, ज्ञान देंगे नहीं, संबंध बनाएंगे नहीं, सुना भी तो नहीं है ना, क्योंकि बाबा तो सीधा सर्टिफिकेट दे देता है। यदि कोई आत्मा कोई बात किसी और को नहीं समझा पा रही है, तो इसका मतलब उसको खुद को समझ में नहीं आया, उसको खुद को ही समझ में नहीं आया। यदि उसको समझ में आ गया होता तो वो दूसरे को समझा देता। बाबा ने इतनी बरसात की है, इतनी बरसात की है, उसमें से उसने कुछ लिया होता तो दूसरे को समझा देता। यदि वो दूसरे को नहीं समझा पा रहा है तो अभी वो समझा नहीं है। हमारे बाबा की तो ना पढ़ाई बड़ी अजीब है ना, और ऐसे ताने मारता है, ऐसे 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 डांट लगाता है, नहीं बस कुछ मत थप्पड़ लगे और खुद को समझे, दूसरा समझ भी ना सके कि इसको थप्पड़ मारा है। मतलब पढ़ाते वक्त साथ के साथ सजा भी देता जाए, हाँ जी,
नए साल की थप्पड़ लगा के समझा रहे,
हाँ नए साल की थप्पड़ लगा के देखा, नए नए साल। खैर हमारे लिए तो रोज आना नया साल है, हमारे लिए तो हर सेकंड नया है, हर कल्प का हर सेकंड हमारे लिए नया है। हमने बाबा की श्रीमत पर सीखा, हर सेकंड हम अपने आप को नया है, क्योंकि पहली बार आ रहा है ना इस कल्प में, तो पहली बार ही आ रहा है ना वो, एवरीथिंग न्यू। एक मुरली में बाबा ने नए साल पर यही बताया, भाई तुम नए युग क्या, नए कल्प क्या, नए वर्ष क्या, नया जीवन, नया जीवन हमारा हर सेकंड नया है, हर सेकंड हमारे लिए क्या है, नया है। हमें इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है, मतलब कोई नए नए पुराने की बात नहीं है, नया तो हमारा हर सेकंड है, तब नया है, और वो वैल्यूएबल तब है, महत्वपूर्ण तब है जब हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे, नहीं तो फिर पुराना ही पुराना है, 5,000 साल बाद तो फिर पुराना ही हो जाता है। हर सेशन, एक सेशन के बाद वो क्या हो जाता है, अब वो 5,000 साल बाद आएगा। वर्तमान हमारे लिए नया है, वर्तमान में हम जी रहे हैं बाबा के साथ, तो हम स्वर्ग में हैं, और वर्तमान में हम जी रहे हैं दुनिया के साथ, तो हम नर्क में है। तो हमें बहुत अच्छी तरह समझना है कि हर पल हमारे लिए नया है, हर पल हमने बाबा की श्रीमत के अनुसार जीना है। हम व्यर्थ कर रहे हैं तो भी बाबा के साथ नहीं, और बाबा की श्रीमत से विपरीत कर रहे हैं तो भी बाबा के साथ नहीं। हमारे लिए वो वैल्यूएबल है, वही हमारे लिए श्रेष्ठ है, जब हम बाबा की श्रीमत पर हर पल एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन क्या है, अभी कल तक आया था, ब्राह्मण जीवन कैसा होता है जीवन के साथ बताओ, बहुत अच्छा सा बेटा, मौजों का जीवन भाई, हाँ मौज ही मौज है, मौजा ही मौजा। अब हमारे जीवन में हमारे मौजें तब आएंगी जब हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। जैसे हमने बाबा की श्रीमत को छोड़ा, मौज तो ढूंढनी पड़ेगी किधर चली गई। प्रश्न, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? बाबा की याद की यात्रा में, याद की यात्रा में बहुत अच्छी तरह से रट गया है कि हमारे में सुधार आ रहा है, तो हम बाबा को याद कर रहे हैं। और यदि हमारे पास सुधार नहीं आ रहा, क्योंकि बाबा ने तो
याद की यात्रा में पहले कई कई काफी टाइम के बाद तो हमें समझ में आया याद की यात्रा क्या होती है। पर तो अब बाबा कहता है योग माना भी याद की यात्रा, याद माना भी याद की यात्रा, मन मना भव माना भी याद की यात्रा, मां में कब याद करो माना भी याद की यात्रा। याद करने का कोई भी शब्द आता है हमने उसको समझना है, उसका मतलब है याद की यात्रा। चाहे वो बाबा कैसे भी कह रहे हैं। हाँ जी बोलो। मुझे भी नहीं समझ में आता था ना, तो मैं भी तो याद अलग है योग अलग है, बाबा कहते योग नहीं बोलो याद बोलो, धीरे धीरे बदला। अब धीरे धीरे बदलने के बाद रिजल्ट निकल के आया कि अलग अलग मुरली में मन मना भाव को भी बाबा कहता है याद की यात्रा, याद को भी कहता है याद की यात्रा, योग को भी कहता है याद की यात्रा। क्योंकि हम सबको जोड़ नहीं पाते थे, सारे यहां याद नहीं कर पाते थे। अब मेरे सामने समझ में आ गया है बाबा चाहे कोई भी शब्द बोले उसका मतलब है याद की यात्रा, और याद की यात्रा का मतलब है मैं हर पल आगे बढ़ रहा हूं, मैं हर पल सुधर रहा हूं, मैंने उस सुधरती हुई अवस्था को देखना है, और जब मैं सुधरती हुई अवस्था को अनुभव करूंगा तब मेरे को मौज आएगी, तब मेरे को खुशी मिलेगी। यदि मेरे अंदर सुधार नहीं हो रहा है तो मुझे खुशी भी नहीं मिलेगी, मैं वजो का जीवन जी नहीं सकता। इसलिए ब्राह्मण जीवन चढ़ती कला, कितना शब्द चढ़ती कला भी याद की यात्रा है, मतलब क्योंकि मेरी चढ़ती कला हो रही है ना तो याद की यात्रा है, मेरे में सुधार ही नहीं हो रहा तो मैं रुकती कला हो गया ना, क्या याद कर रहा हूं मैं। मतलब एकदम मतलब बाबा की जो बातें हैं ना इतनी क्लियर है, इतनी क्लियर है कि हमें उसको समझ सके। परंतु बाबा के सामने हर प्रकार के बच्चे हैं, इसलिए बाबा को शब्दों में थोड़ा थोड़ा अंतर करके समझाना पड़ता है ताकि वो अपने मतलब से समझ जाए, वो अपने मतलब से समझ जाए, वो अपने मतलब से समझ जाए। बहुत वंडरफुल टीचर है, मतलब सोच नहीं सकते कि एक ही चैप्टर में सबको खुश कर दे। याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है, इसमें मेहनत कौन सी है, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बिंदु रूप क्या है कौन बताएगा, बिंदु रूप क्या है, बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट, उसकी डेफिनेशन से समझ पाएंगे। बिंदु की डेफिनेशन किसको याद है, हाँ हाइट में, ऐसा ऐसा चिन्ह जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है उसको कहा जाता है बिंदु। परमात्मा वो है जिसको हम इन आंखों से तो क्या किसी दुनिया से सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ना देख सकते हैं, ना उसका वो बिंदु बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा बिंदु बना ही नहीं सकते जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो। अब इसको देखने के लिए क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, उसको देखने के लिए कहीं भी क्यों सोच रहे हो कि वो पॉइंट दिखाई दे, वो बिंदु दिखाई दे, वो लाल लाइट दिखाई दे। ये बिंदु को देखना, तारे को देखना कहां से दिखेगा, वो है ही नहीं, वो इन आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है। उसको समझना है कि ये बाबा की जो श्रीमत है यही परमात्मा है। उसको देखने के लिए अपना दिमाग को मत घुमाओ, वेस्ट मत करो टाइम कि मैं उसको देख करके याद करूं, नहीं, परमात्मा ने जो कहा है यही मार्गदर्शन है, हमारे सामने दे दिया, स्पष्ट कर दिया, हमें समझ में आ गया कि वो दिखाई देने वाली चीज नहीं है, उसको देखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ने जो लॉज दिए हैं, जो नियम दिए हैं, उन नियमों पर चलना ही पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है, लाकुल बनना है, यही ला है, यही नियम है। इसलिए ये बात भी कितनी कंप्लीट है कि परमात्मा नए युग नए कल्प की शुरुआत ये पहले ही आकर के सबको सारे नियम बता देता है, सबको। अब कौन कितना समझता है, कितना धारण करता है, वो उस आत्मा की मर्जी। और जो धारण करनी, हाँ जी,
बिंदु बाबा बिंदु नहीं सिंधु है,
हाँ मतलब बाबा रूप में बिंदु है, ज्ञान में सिंधु है, क्योंकि बाबा ने अपने अपने तरीके से टाइम टाइम पर बात को क्लियर करता है। मतलब ज्ञान सागर होना मतलब नियमों को बताने वाला होना, क्योंकि परमात्मा आकर हम सबको वो सारे नियम अब बता रहा है, जिन नियमों पर ये पूरा का पूरा वर्ल्ड ड्रामा चलता है, उन नियमों को अब हमें समझना है और उस पर हमने चलना है, तब याद की यात्रा होगी। हम नियमों को समझे नहीं, सुन तो लिया पर तो समझना, फिर उसके बाद स्वीकार करना, समझने के बाद जब तक हम स्वीकार समझ तो लिया पर तो बाबा कह तो रहा है परंतु करूं कैसे, नहीं करना है, स्वीकार कराना है अपने आप को और फिर उसका अनुभवी बनना है। जब हम अनुभवी बनते हैं फिर हम दूसरों को दे सकते हैं। जब तक हम अनुभवी नहीं बनते तब तक दानी तो बन सकते हैं, चलो जितना समझ में आए उतना तो देंगे ना। जितना जितना हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा उतने हम एक्सपर्ट होते जाएंगे, जितना हम एक्सपर्ट होते जाएंगे उतनी हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। एक्सपर्ट होना माना अपनी शक्ति को बढ़ाना। बाप जो है, ऐसे से ये लाइन बहुत बार आपने सुनी है, बाप जो है जैसा है उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, उसमें मेहनत है, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। हमने वो जो है ना अंधेरा उतारना है, जैसे अब हमारे सामने से हमें बाबा का चित्र देखने की जरूरत नहीं है। हम कहीं भी हैं, हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो बाबा याद है। ये है यथार्थ याद का आगे बढ़ना। और जितना जितना हम रोजाना समझते जा रहे हैं हमें रोजाना कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ फालतू हटता जा रहा है और हम नए रास्ते पर एकदम स्पष्ट समझते जा रहे हैं हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये मेहनत है, क्योंकि वह हम रोजाना मुरली सुनते हैं तो हमारा वो अंधेरा दूर होता जाता है, ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जाते हैं। जो प्यास के साथ है उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर में बादल है तो बादलों का बाप हुआ ना, कौन हुआ बादलों का बाप, बादलों का बाप सागर हो गया। बाबा है सागर, वो है ज्ञान का सागर, वो है पानी का सागर। तो जब बादल सागर के साथ हैं उनके लिए ही बरसात है। जो ज्ञान सागर के साथ हैं, हम ज्ञान सागर के साथ कैसे हो सकते हैं, शिव बाबा के साथ हम कैसे हो सकते हैं, उंगली पकड़ रखी है बाबा की, उंगली हमारे हाथ में है तो हम उसके साथ हैं। अब हम अलग उंगली पकड़ रखी है तो हम उल्टा तो नहीं जा सकते ना, बाबा उधर जा रहे हैं हम दूसरी तरफ तो नहीं जा सकते ना, उंगली छोड़ रखे तो हम किधर भी चले जाए, माया हमें कैसे भी खींच ले। हमने बाबा की उंगली पकड़ रखी है, माया हमारे को खींच नहीं सकती। पहले तो हमारी उंगली छिड़ाती है, पहले बात माया क्या करती है, मुरली मुरली छिड़ा देती है, रोजाना वही बात करती है, क्या ठीक है एक दिन नहीं जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा पता है हमें, बाबा कहता है कोई बात नहीं याद कर लेंगे हम बाबा को। मतलब मुरली छुड़ाती है, पहले बाबा की उंगली माया छुड़ाती है, क्योंकि इधर आओ बस, एक बार हमने बाबा की उंगली छोड़ी माया की तरफ गए तो बाबा की उंगली पकड़ी हुई है तो हम बाबा के साथ हैं सारा दिन। जहां हमने बाबा की उंगली छोड़ी, माया का कहना माना, अपनी मत पर चले या किसी और की मत पर चले, बात एक ही है, तो हम पिया के साथ नहीं है और हमारे लिए ज्ञान की बरसात नहीं है। वो सारा पानी जो है ना सारा का सारा पानी कहां चला जाता है? बाबा के पास। साथ है तो हमारे पास बाबा के खजाने, बातें में हमें कोई भी देरी नहीं लगती। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए, सागर के बच्चे बादल तो हो ही जो मीठा पानी खींच लेते हैं। बादल क्या करते हैं? मीठा पानी खींच लेते हैं। क्या कैसी कैसे पास पर आते हैं? समुद्र के अंदर सूर्य की गर्मी पड़ने से पानी स्टीम बनता है और बादल बनता है, क्योंकि गर्मी तेज पड़ती है, पानी उड़ेगा, पानी उड़ेगा तो बादल बनेगा। परंतु यहां बाबा कहते बादल क्योंकि दिखाई दे रहा है इसलिए बादल चूसता है। हम आत्माएं आई हैं, हमें बादल का नाम दिया है बाबा के पास, हम उस पानी को अपने में चूसते हैं, ठीक है, और फिर हवा के साथ उड़ करके जहां पहुंचते हैं वहां फिर बरसते हैं, और बरसते हैं तो वहां पानी जमा हो जाता है, फिर हम नदी बन जाते हैं। क्योंकि जब तक बरसेंगे नहीं तब तक हम नदी नहीं बन सकते, हमें नदी नहीं कहा जाएगा, हम बादल हैं, हमने पानी को भर रखा है परंतु बरस नहीं रहे हैं। और कहीं बरसे हैं तो थोड़ी सी जगह पर बरसे हैं, थोड़ी सी जगह पर बरसे हैं, तो थोड़ी जगह पर बरसात करेंगे तो क्या होगा? एक जोर भर जाएगा, एक ट्यूब का जोर से छोटा होता है ट्यूब का गड्ढा, ठीक है, और उसके ऊपर फिर यदि थोड़ा सा फालतू हो गया तो एक नाला सा बन जाता है, फिर नहर बन जाती है, और बड़ा है तो नदी बन जाती है, और बड़ी है तो बहुत बड़ी नदी बन जाती है। तो बाबा बरसने को कितना बरसते हो आप वो हो, इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा कि तुम कोई तुमका बन जाता है, कोई नाला बन जाता है, कोई नहर बन जाता है, तो कोई नदी बन जाता है। तो अपने आप को हम चेक करें कि हम क्या बने हैं। तो जो मीठा पानी खींच लेते हो, अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई खूब जोर से बरसते हैं बाढ़ कर देते हैं, और कोई कम बरसते हैं, यही आ गया। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार हैं, जो खूब जोर से बरसते हैं उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, ये भी ऐसे हैं। जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है, जो नहीं बरसते हैं उनका दिल जैसे सुस्त है। हाँ जी, वो बहुत अच्छा है, उसने तो सबको जीवन मुक्ति में फटाफट ले गया। यहाँ कोई नुकसान वाली बात ही नहीं है, यहाँ से जाके बादल फटो, अब बादल फटेगा सारे के सारे उसमें बह जाएंगे ना, उनको तो सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो एकदम हाँ हाँ जी उनकी दिल जैसे सुस्त होती है, जो सुनाई नहीं रहे हैं उनका दिल क्या है? सुस्त है, और पेट भरेगा नहीं, दिल सुस्त है। दिल सुस्त होने का मतलब सुन रहे हैं कि वो बाबा का चल कल कर अलबेलापन आना, सुस्ती आना, ये ज्ञान को अपने में भरता नहीं। अब वो पेट भरेगा ही नहीं, फिर पेट भरेगा नहीं, पूरी रीति धारणा ना होने से फिर पेट और जाकर पीठ से लग जाता है, जिसको कहा जाता है सहमन। सहमन क्या होता है? अंग्रेजी पढ़ाता है बाबा मोहन जी,
अकाल
पर खाने को नहीं मिल रहा, उसके लिए अकाल है। अब अकाल पड़ गया है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या होगा? अब आपको दो दिन तीन दिन खाना ना मिले क्या होगा? मरेंगे तो नहीं, पर तो होगा क्या? पेट पीठ के साथ मिल जाएगा, पेट पीठ से लग जाता है। यहां भी धारणा कर और धारणा नहीं कराते तो पेट जाकर पीठ से लगेगा। समझ में आ गया? कैसे समझाता है, उदाहरण कहां से ढूंढ के लाता है? खूब बरसने वाले जाकर राजा बनेंगे और वो गरीब बनेंगे। गरीबों का पेट पीठ से रहता है तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए, इसमें भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है तुम अब समझते हो। हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था, इसलिए हमारा पेट पीठ से लग गया था। आज बाबा ने आकर हमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया, थोड़ी सी ताकत आ गई है। मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात, मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते हैं तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे, परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे। कितने बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते हैं। अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नींदा हुआ है। अविनाशी पाठ क्या है? नींदा हुआ है, जो चलता रहता है। आत्मा अविनाशी तो पाठ भी अविनाशी है। आत्मा कैसा ऑलराउंड पाठ बजाती है ये किसी को पता नहीं है। वे तो आत्मा से परमात्मा कह देते हैं। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है। वे तो ड्रामा की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है, तुम जानते हो इस बात के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में ये सारी दुनिया स्वाहा होनी है। ये सारी दुनिया क्या होगी? स्वाहा होनी है। इसलिए बाप कहते हैं दे सहित जो कुछ भी है ये सब भूल जाओ। ये सब क्या करो? भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को और शांति धाम स्वीट होम को याद करो। ये तो है ही दुख धाम। ये क्या है? ये तो है ही दुख धाम। तुम्हारे लिए भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। अभी तुम ज्ञान से तो भरपूर हो, बाकी सारी मेहनत है याद में। बाकी सारी मेहनत किस में है? याद में। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझे और बाप को भी बिंदु रूप में याद करें, इसमें मेहनत है। इसमें क्या है? इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकता है। मैं जो हूं जैसा हूं इसको मुश्किल याद कर सकते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं ना, अपने को जाना तो बाप को भी जान जाएंगे। तुम जानते हो पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है, पढ़ने वाले बहुत हैं। बाप राजधानी कैसे स्थापन करते हैं वो तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी ये शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है, बाकी इसमें गिरना की कोई बात, पर हमें किसी से गिरना नहीं करने, चाहे वो किसी धर्म किसी मजहब किसी पंथ किसी विचार को मानने वाला है, चाहे वो हमारे क्या है ब्रह्मा कुमार से भी निकल करके अलग अलग शाखा में चले गए हैं, अलग अलग ब्रांच में चले गए हैं। हमने अपने अंदर उन आत्माओं के प्रति घृणा का भाव नहीं लाना, चाहे वो ओम मंडली हो चाहे वीरेंद्र देव दीक्षित हो। इसके जितनी भी पार्ट्स बन गए हैं 20-25-30 अब बढ़ते जा रहे हैं, इनकी ब्रांचेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अब इनका कोई कंट्रोल तो रहा नहीं है। हर एक अपने सेंटर का अपना ही मालिक है, क्योंकि उनका कोई मेन सेंटर नहीं रहा, इसलिए इनकी ब्रांचेस का कोई लिमिट अब हम नहीं देख सकते। परंतु हमें उनसे भी कोई नफरत नहीं करनी है, हमें उनको समझाने का पुरुषार्थ करना है। परंतु वो समझे ना समझे, वो आत्माओं का पाठ है, हमें समझ में आ गया है। तो हमने उनसे भी नफरत, हमारे अंदर कोई फीलिंग ऐसी नहीं आए जब उनसे नफरत करें। और हमें कभी कभी आवाज तेज हो जाती है, इस पर भी हमें कंट्रोल करना है कि हमारी आवाज भी किसी के प्रति तेज नहीं हो। वो कैसा भी है, वो जैसा भी है, वो है तो मेरे बाप का बच्चा। मतलब इस चेकिंग को भी, सूक्ष्म चेकिंग को भी हमने अपने आप में देखना है। चाहे वो अपने आप को कुछ भी मानता है, हमारी बात नहीं मानता, ना माने, क्यों माने हमारी बात बताओ, उसका पार्ट है वो, तो वही करेगा ना, वो हमारे अनुसार से ना चलेगा। वो बाबा की बात नहीं मानता, हम कौन होते हैं, उसने अपने पार्ट के अनुसार चलना है। तो हमें बाबा समान बनने के लिए ये बात अपने आप को मन मना भाव करनी है। जितना हम मन मना भाव करेंगे तब हम बाप समान ऐसे बन सकेंगे, क्योंकि एक एक बात समझ में आती जाएगी तब हम उस पर चलेंगे और तब वो हमारे जीवन में आएगी, तब हम बाप समान बनते जाएंगे। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं, परंतु समझते नहीं है। रात और दिन आधा आधा होता है, सीवी पर कितना सहज समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वे जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती हैं, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूं क्या? भारत में आफतें आती रहती हैं, मैं कभी आता हूं? बाढ़ आए, भूकंप आए, डूबे, मरे, जले, फैमन पड़ा, कितना अकाल पड़ा, कितने लोग भूख से मरे, कितने लोग, और बाबा आया, तड़प रहे, तड़पते रहो, कितने हॉस्पिटल में दुनिया तड़प रही है, बाबा आता है, कहते रहो, बुलाते रहो, हनुमान जी आ जाओ, राम जी आ जाओ, कृष्ण जी आ जाओ, मेरे को उसने बचा लिया, तो भी वही का वो आ जाएगा, दवाई खाने की जरूरत नहीं है, कहां से आएगा वो, तलवार खा के गर्दन का तो आ जाएगा, नहीं आएगा वो, मेरे पास की लिमिट है, बाबा कहते भाई। इसलिए मैंने बाबा की पहली लाइफ में कैसे स्पष्ट हुआ कि मर्यादा है, बाबा भी उस मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता। तो जब बाबा मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता तो फिर कोई कैसे जा सकता है? मर्यादा में रहते हैं तभी तो गलती नहीं होती, गलती होती ही तब है जब हम मर्यादा से बाहर जाते हैं। जब पूरा दुख होता जाता है तब मैं अपने समय पर आता हूं, एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। नैनो सेकंड क्यों नहीं बोला दादा ने? हम नैनो सेकंड बोलते हैं, बाबा नैनो सेकंड क्यों नहीं बोलता भाई? बाबा समझता है ये बच्चे नैनो सेकंड समझेंगे नहीं, इनको पहले लेक्चर दूं, नैनो सेकंड बताऊं, तब इनको नैनो सेकंड समझ में आएगा। मतलब एकदम, मतलब सेकंड का लाखों हिस्से का भी फर्क नहीं पड़ सकता, इतना हमने अपनी बुद्धि को समझा देना है। मोटे रूप से सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता, ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि एक्यूरेट है, कभी भी ड्रामा आगे पीछे नहीं हो सकता। 5000 साल माना 5000 साल, कहीं से भी शुरू करेंगे वहीं आकर के 5000 साल पूरे हो जाएंगे। वर्तमान ही उसकी धुरी है, मतलब उसका वर्तमान से ही सीधा हिसाब है। अब से 5000 साल बाद फिर हम इस समय ऐसे ही ये मुरली सुन रहे होंगे, जो एक्ट कर रहे हैं वह ठीक 5000 साल बाद कर रहे होंगे। अब दूध बिखर गया, 5000 साल पहले भी बिख रहा था, इसी टाइम बिख रहा था, ऐसे ही बिख रहा था, फिर मैं क्यों घर में क्लेश करूं, क्यों तूफान लाऊं घर के अंदर? एक सिक्किम का भी फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट नींदा हुआ है, ये है हाईएस्ट बाप का री इनकारनेशन, पुनर्स्थापना।
5000 साल बाद
ऑनलाइन हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल ऑनलाइन सुनोगे और सबसे अच्छा है ना, बस पानी में भीगने की जरूरत नहीं, कीचड़ में जाने की जरूरत नहीं, गड्ढे में फंसने की जरूरत नहीं, कितने फायदे हैं, हृदय जैसे निकलने की भी जरूरत नहीं और आराम से, मतलब देखो जैसे भी है मतलब हम जागृत और हैं भी नहीं, कोई जो भी है, मतलब मेरा कहने का यह है कि आराम है ना, कितना आराम देता है बाबा हमें ये साधन, आराम के मिले हैं उसका हम फायदा उठा रहे।
आपने दे रखा आराम?
मैंने नहीं दे रखा भाई, ये बाबा ने दे रखा है, मैं कौन होता हूँ, मैं मेरे को भी तो आराम मिल रहा है ना, अब मेरे को भी देखो अब आपके पेशेंस से ही तो मैं आपके साथ इतनी देर बात कर पा रहा हूँ, नहीं तो आप भी भागते हो मैं भी भागता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक है तब तक तो हम इसका फायदा उठाए। फिर नंबर वार सब आते हैं कम ताकत वाले, तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिली है तो तुम विश्व के मालिक बनते, तुम विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है, पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, औरों का तो पार्ट ही नहीं है, मुख्य है ड्रामा, जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है बाकी तो सब है मेटीरियल, बाकी तो सब क्या है मेटीरियल है, क्योंकि वो तो मेटीरियल है ना विनाशी, और सब इन आंखों से देखा जाता है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है, वंडर सबसे बड़ा वंडर आज कहते हैं मैं, ठीक बोल रहे हैं बाबा, एक बार पहले मैंने मुरली में पढ़ा था, कहता है वंडर ऑफ वर्ल्ड तो है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड है स्वर्ग, आज बाबा कहते हैं स्वर्ग क्या है, उससे भी बड़ा वंडर मैं हूं, क्यों है सबसे बड़ा वंडर मतलब कितना कैसा वंडर है, कहते वंडर ऑफ वर्ल्ड तो मैं हूँ, समझाओ ना सबको कि वंडर ऑफ वर्ल्ड क्या,
वंडर ऑफ द वर्ल्ड, हाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं, फिर भी
सारा ज्ञान है, कितनी बातें बताइए, ये सारी बातें मतलब वंडर ऑफ वर्ल्ड, वंडर मतलब ये एक टॉपिक बाबा ने दिया है हमें, इस टॉपिक को भी हम कभी शुरू कर पाएंगे, याद रखेंगे कि वंडर क्या है, वंडर ऑफ वर्ल्ड क्या है, मतलब ये हम आप सभी कोशिश करके लिखो कि क्या क्या बाबा ने वंडर ऑफ वर्ल्ड क्यों बताया है, मतलब आप होमवर्क समझे, वो तो देखेंगे, परंतु पहले आप तैयार तो करेंगे ना, मैं ऐसे कैसे कसना सर करूंगा, पहले उसके लिए तैयारी तो करो ना, सारे के सारे कुछ ना कुछ बनाओ लिखो कि पूरे, मैं वही बता रहा हूँ वंडर ऑफ वर्ल्ड क्या क्या है, बाबा ने क्या क्या वंडर दिए हैं जो दुनिया में थे ही नहीं, तब हम उस टॉपिक, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है, वंडर ऑफ वर्ल्ड आप सभी मेहनत करो, लिखो और व्हाट्सएप पर भेजो, फिर मैं उन सबको इकट्ठा कर दूंगा ताकि फिर हम चर्चा भी करें, ऐसे चर्चा नहीं कर पाएंगे ना, मैं कंप्यूटर तो नहीं हूं ना, सारी बातें मुझे याद नहीं है, आप जो भी आप नोट करें कि वंडर ऑफ वर्ल्ड क्या क्या बताया है बाबा ने, तो फिर उन सबको मैं इकट्ठा कर दूंगा, तो फिर सबका सब तक पहुंच जाएगा आसानी से, तो ये टॉपिक बहुत अच्छा बन सकता, तभी बन सकता है, तो इसमें सब मेहनत तो आप करेंगे, मैं तो मिनट उसको इकट्ठा करके सबको बताने के लिए काम कर सकता हूँ, सबको तो आप तो सबसे निकल के आएंगे ना, तो फिर सबके पास वो क्या बन जाएगा, सबको पद्मा पद्म भाग्यशाली बनाने में मिनट बनेगा, तो आपने अपना अपना योगदान देना है, ये होमवर्क है हम सबके लिए, मैं भी ढूंढूंगा परंतु आप भी ढूंढना, फिर किसी दिन इसको सबके लिए कॉमन कर देंगे, सबको देने के निमित्त बन जाएंगे, जो कि रस्ते भी है, रस्ते भी स्वर्ग है, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं, उनकी कितनी महिमा है, बाप और बाप की रचना की बड़ी महिमा है, ऊंच पे ऊंच है भगवान, ऊंच पे ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं ये कोई भी कुछ भी नहीं जानते हैं, तो मीठे मीठे बच्चे भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो और उस अनुसार ही पद पाते हो। जिसने पुरुषार्थ किया वे ड्रामा अनुसार ही करते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो कुछ मिल ना सके, वे बिना मेहनत किए आप सब मेहनत नहीं करेंगे क्या मिल सकता है। ये टॉपिक तभी तैयार हो सकता है जब सारे पुरुषार्थ करेंगे ना। कर्म बिगड़ एक सेकंड भी रह नहीं सकते। वो हाथ योगी प्राणायाम चढ़ा लेते हैं। प्राणायाम जानते हैं? प्राणायाम में क्या होता है कि सांस लिया, उसको कुंभक कर लेते हैं, अपने अंदर रोक लेते हैं और उस रोकने में अपनी सीमा बढ़ाते हैं, अभ्यास करते हैं, समय बढ़ाते हैं। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, मतलब वो बिना सांस लिए, मतलब जो सांस ले लिया है उसको रोक लेते हैं और उसके बाद छोड़ेंगे तो दूसरा सांस अंदर जाएगा और उसको छोड़ते नहीं। तो वो 1-1 घंटे तक भी अभ्यास करके मतलब सांस नहीं लेते, इसको प्राणायाम बोलते हैं। और हर एक की क्या कैपेसिटी है, कितना वो कर पाता है। और ये पहले इसको डेवलप किया गया था कि ताकि कोई पानी में डूब जाए तो जो गोताखोर होते हैं वो गोताखोर 5 मिनट 10 मिनट तक सांस नहीं ले, पानी में जाके सांस लेंगे तो वो तो चले जाएंगे ना, पानी अंदर भर जाएगा, तो अंदर जाकर सांस नहीं ले सकते, लेते थे तभी वो वाला लाश को उठाकर ले आते थे। मतलब इतनी कैपेसिटी अपने अंदर वो भर बना लेते थे। तो प्राणायाम को एक साधन के रूप में उन्होंने डेवलप किया था, परंतु वो कोई आत्मा शारीरिक शक्ति है, शरीर क्षमता है, क्योंकि वो इतनी देर तक जो शरीर के अंदर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है उसी के आधार पर अपने आप को जीवित रखते हैं। तो हठ योग, ये क्या है हठ योग, जिद करते हैं ना अपने साथ, चढ़ा लेते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं, मतलब उतनी देर तक मतलब वो चढ़ाकर बैठे रहते हैं, एकदम जड़, हिलना डुलना बंद, सब कुछ बंद कर देते हैं, जड़ बन जाते हैं, अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर मिट्टी जम जाती है, मतलब इतना जड़ हो जाते हैं कि ऊपर मिट्टी जम जाती है उनके ऊपर, इतना लंबे समय तक, मतलब दिनों तक, मतलब घंटे तक मैं सोच रहा था, परंतु ये तो दिनों तक मतलब जो है ना एकदम जड़ बैठे रहते थे और उनके ऊपर जड़े जम जाती है। जो आजकल के योगी साधना ऐसी नहीं करते हैं कोई भी, मतलब इतना होते हैं कि उनके ऊपर मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास जम जाती है। सोचिए कितना टाइम लगता होगा सांस को रोक कर बैठे हुए हैं, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं। बाबा कहते परंतु इससे कुछ फायदा नहीं, कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे। कर्म तो जरूर करना ही है ना, कर्म सन्यासी कोई बन ना सके। हाँ, सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते हैं इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते हैं, ये भी उनका ड्रामा में पार्ट है। ये निवृत्ति मार्ग वाले भी नहीं होते तो भारत की क्या हालत हो जाती। भारत नंबर 1 प्योर था, बाप पहले पहले प्योर की स्थापन करते हैं, जो फिर आधा कल्प चलती है। बरोबर सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, फिर द्वितीय राज्य आज फिर से स्थापन हो रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्यों को सजाग करना चाहिए, फिर से द्वितीय राज्य भाज्य आकर लो। अभी तुम द्वितीय राज्य भाज्य देवी देवताओं बनने वाला राज्य, कितना अच्छी रीति समझाते हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं ये भी अभी तुम जानते हो। आज कल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, श्री कृष्ण से कंपटीशन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, परंतु जानते थोड़े हैं। तुम बच्चे जानते हो जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, ये भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे। परंतु माया सिमरन करने नहीं देती है, भुला देती है। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख कितना खुश होते हैं, राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देख कितना खुश नहीं होते, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे की बातें लिख दी हैं। ये बाबा बनता भी श्री नारायण है ना। बाबा तेन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी ऐसे समझना चाहिए, बाकी कितना समय इस पुराने शरीर में होंगे, फिर जाकर प्रिंस बनेंगे। ये एम ऑब्जेक्ट है ना, ये भी सिर्फ तुम जानते हो। खुशी में कितना गद गद होना चाहिए, गद गद होना, बोल ना सकना, मतलब खुशी में अपनी खुशी को हम बोल नहीं सकते, उस अवस्था को कहते हैं गद गद होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। कहां विश्व के महाराजा महारानी, कहां सौकार प्रजा में नौकर चाकर। सब्जेक्ट तो एक ही है, सिर्फ मन मना भाव मध्याजी भाव अलग और बे याद और ज्ञान। इनको कितनी खुशी हुई, इनको कितनी खुशी हुई। अलग को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। कितनी बड़ी लाठी मिल गई है, बाकी क्या चाहिए। तो क्यों ना बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा ट्रांस लाइट का चित्र सबके लिए बनवाएं, जो बच्चे देखकर खुश होते रहें। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ये वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अभी तुम तुच्छ बुद्धि से सच बुद्धि बन रहे हो, सब कुछ जान गए हो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं, हर एक की दिल को जानते हैं, परंतु बाप तो नॉलेज देते हैं, टीचर समझ सकते हैं, फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारा दिन ये थोड़े बैठ देखेंगे कि इनकी बुद्धि में क्या चलता है। मैं तुम्हारी बुद्धियों को तुम्हारा रोजाना चेक करूंगा, सारा दिन देखता रहूं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी बुद्धि में क्या चल रहा है, उसकी बुद्धि में क्या चल रहा है। ये तो वंडरफुल नॉलेज है, वंडरफुल। कितना देखो बाबा बता रहे हैं, वंडरफुल नॉलेज है ये, नॉलेज वंडरफुल है। जो भी मुरली सुन रहे हैं सब भी इस विषय पर क्या क्या आपको वंडर लगता है वो लिख करके व्हाट्सएप करेंगे, तो सबको इकट्ठा करके हम इकट्ठा सबके लिए भेज सकेंगे। जो पुरुषार्थ करेगा, निमित्त बनेगा सब तक ये पहुंचाने में, तो वो अपना भाग्य बनाएगा। तो ऐसे टॉपिक, ऐसी बातें, जहां जहां आपको क्या वंडर लगता है वो आप लिख करके भेज दें, तो फिर ये एक बहुत बड़ा अच्छी तरह एक विषय बन जाएगा, जो सबको हम क्लियर कर सकेंगे कि ये वंडर है, कैसे है ये वंडर। तो ये टॉपिक सबको अपनी तरफ आकर्षित भी करेगा। बाप को ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर कहा जाता है। तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, फिर ये टाइटल उड़ जाएगा, फिर सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। ये है मनुष्य का ऊंच मर्तबा, इस समय ये है ईश्वरीय मर्तबा। कितनी समझने और समझाने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम अभी विश्व के मालिक बनेंगे, नॉलेज से ही सब गुण आते हैं, अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हर एक के पास होना चाहिए। ये चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है, दिल में आता है, बस ये मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है, फिर हम अमर लोक में ये जाकर बनूंगा। तत्त्वम ऐसे तुम भी बनेंगे, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, हम आत्मा परमात्मा नहीं बन सकते। ये ज्ञान सागर बुद्धि में, ये ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ हो। जब भी किसको समझाते हो बोलो, हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत है, हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं, ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं, शूद्रों के पैसे से नहीं, शूद्र के पैसे नहीं लगा सकते। ढेर बच्चे हैं वो जानते हैं, जितना हम तन मन धन से सेवा करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना पद पाएंगे। जानते हैं बाबा ने बीज बोया है तो ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, पैसे यहां काम में तो आने नहीं है, क्यों ना इस कार्य में लगा दें। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या? बहुत संभाल होती रहती है बाबा की, कितनी संभाल होती रहती है। ये तो शिव बाबा का रथ है ना, सारे वर्ल्ड को हैविंग बनाने वाला, हसीन बनाने वाला, सारे वर्ल्ड को क्या बनाता है? हसीन। ये है हसीन मुसाफिर। ये हसीन मुसाफिर कौन है? शिव बाबा। ये सारे संसार को हसीन मुसाफिर है ये, जो सबको प्यारा लगता है। ऐसा कोई दुनिया में और नहीं हो सकता। कितना बड़ा वंडर ऑफ वर्ल्ड है, हसीन मुसाफिर है ये सारे संसार के अंदर, ऐसा कोई और है ही नहीं। वही वंडर होता है ना, जैसा कोई ना हो। परम पिता परमात्मा तो आकर सबको हसीन बनाते हैं, हर एक चीज में जादूगर भी है, रत्नागर भी है, क्या क्या नहीं है, सारे नोट करने हैं कि परमात्मा को क्यों कहा जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। उस जैसा कोई है ही नहीं, रिकॉर्ड को तोड़ ही नहीं सकता। सारे रिकॉर्ड शिव बाबा के नाम आएंगे। तो आप ये सारी लिस्ट अपने अपने दिमाग लगा के बनाओ, तो सबके मिल मिला करके किसको 10 याद आएंगे, किसको 2 याद आएंगे, किसको 4 याद आएंगे, सारी मिल करके एक बड़ी लिस्ट सबको मिल जाएगी। तुम सावरे से गोरा हसीन बनते हो ना, कितना सलोना साजन है, आकर सबको गोरा बना देते हैं। उन पर तो कुर्बान जाना चाहिए, सारी दुनिया कुर्बान जाती है, कोई आत्मा ऐसी नहीं है वर्ल्ड की जो परमात्मा पर कुर्बान ना जाए। ये भी वंडर ऑफ वर्ल्ड है। ये सारे रिकॉर्ड नोट करने, याद करते रहना चाहिए। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी जान सकते हैं। देखने में तो आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु हैं। कितना देखो ना, सारे चैप्टर में टॉपिक लेके चला है, कैसे मतलब अपना वंडर सिद्ध कर रहा है कि उनका रूप भी वंडर है, परमात्मा वंडर है, परमात्मा के बाद नेक्स्ट कौन वंडर है? सारी आत्माएं वंडर है। फिर नेक्स्ट कौन वंडर है? सारा जो रचना की वो भी वंडर है। रचना के वंडर तो सारी दुनिया गाती है, कैसे फूल बनाया, क्या कमाल की बात है, भगवान का कमाल है, ऐसे फूल बनाए, ऐसे उसके अंदर सुगंध भरी, क्या 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 क्या। वह दुनिया सारे जो वंडर ढूंढ रही है, उन सब वंडर्स को बनाने वाले कौन, ये भी बड़ा वंडरफुल है। हाथ खड़ा किया नरेश भाई ने, बोलो भाई। हाँ नरेश भाई, कुछ पूछना चाहते हैं क्या? ये बड़ी समझ की बातें हैं, बच्चों की बुद्धि में ये नोट रहना चाहिए। कोई बात नहीं, बच्चों की बुद्धि में ये नोट रहनी चाहिए। बुद्धि में नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयां याद रहती है ना, तभी तो इलाज कर पाते हैं। तो ऐसे ही बाबा के बच्चों को भी बाबा कहते मेरे ज्ञान रतन याद रहने चाहिए। ऐसे नहीं कि उस समय बैठ किताब देखेंगे, तो डॉक्टरी की भी पॉइंट्स होती है ना, तो ऐसे ही ज्ञान के पॉइंट्स भी सारे अपनी बुद्धि में नोट करो, बुद्धि के अंदर याद रखो, ताकि समय पर उसको यूज कर सको। बैरिस्ट्री की भी पॉइंट्स होती है, तुम्हारे पास भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिस पर समझाते हो। कोई पॉइंट किसको फायदा कर लेती है, कोई को किस पॉइंट से तीर लग जाता है। पॉइंट तो बहुत ढेर की ढेर है, जो अच्छी रीति धारणा करेंगे वही अच्छी रीति सर्विस कर सकेंगे। आधा कल्प से महारोगी पेशेंट हैं, महारोगी पेशेंट हैं, आत्मा पतित बनी है, उनके लिए एक अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। एक ही अविनाशी सर्जन है, सर्जन भी वंडर है, हर एक चीज ढूंढनी है। मतलब अविनाशी दवाई देता है, और ऐसी दवाई जो दुनिया में किसी को दिखाई भी ना दे, और सारी आत्माओं की बीमारी ठीक करता है, सारी आत्माओं को पावन बनाना, ये भी बंदर है। कितने बंदर हैं, इनको लिखना पड़े तब जाके बात हो। कभी बीमार होते नहीं, और तो सब बीमार पड़ जाते हैं। अविनाशी सज्जन एक ही बार आकर मन मना भाव का इंजेक्शन दे लगाते हैं। कितना सहज है, चित्र को पॉकेट में रख दो सदैव। कौन सा चित्र पॉकेट में रखना है, लक्ष्मी नारायण, क्यों नहीं। कितना सहज है, चित्र को पॉकेट में सदैव रख दो। बाबा नारायण का पुजारी था तो लक्ष्मी को चित्र निकाल अकेला नारायण का चित्र रख दिया। अभी पता पड़ता है कि जिसकी हम पूजा करते थे वो अब बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी तो ये पक्का है कि हम लक्ष्मी नहीं बनूंगा, ठीक है कि नहीं। लक्ष्मी बैठ पैर दबाए ये अच्छा नहीं लगता था, उनको देखकर पुरुष लोग स्त्री से पैर दबवाते हैं। स्त्री भी समझती है भाई मेरा काम है, मेरा फर्ज है पति के चरण दबाना, दबाती है बेचारी। वहां थोड़ी लक्ष्मी ऐसे पैर दबाएगी, ये रस्म रिवाज वहां होता ही नहीं। ये रस्म रावण राज्य की है। इस चित्र में सारी नॉलेज है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है। इस नॉलेज को सारा दिन सिमरण कर बड़ा वंडर लगता है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है, कितनी अच्छी समझानी है। पता नहीं मनुष्यों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता। आगे आग बड़े जोर से लगेगी, बम बोर को आग लगनी है, सारे ब्रह्मांड को आग लगनी है। रावण राज्य तो जरूर खलास होना चाहिए, रावण राज्य तो जरूर खलास होना चाहिए। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण होने ब्राह्मण चाहिए, ये बड़ा भारी यज्ञ है ना, सारे विश्व में पेल्टी लाने का। वो ब्राह्मण भी बाल ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, परंतु वे तो कुख वंशावली हैं। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुख वंशावली थे ना, तो उन्होंने ये समझाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर नॉलेजफुल ज्ञान का सागर बनना है। नॉलेज से सर्व गुण स्वयं में धारण करने हैं, नॉलेज से सर्व गुण स्वयं में क्या करने हैं, धारण करने हैं। जैसे बाबा ने तन मन धर्म सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए, सदा कैसे रहना है, रिफ्रेश ताजा रहने के लिए एक ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र अपने साथ में रखना है। और मेरा क्या है वर्तमान में, मेरा अपना क्या है, सारे संसार के धर्मों की आत्माओं को बाप से मिला, ये मेरा जो लक्ष्य बनाया हुआ है वो मेरा है वर्तमान लक्ष्य, कि ये अभी इस काम को करना है। और उसमें आपको सबको सहयोग देने का निमित्त है, सभी अपना अपना सहयोग देकर इस कार्य को करेंगे, कर सकते हैं। वरदान, एक रस सृष्टि द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भाव। आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप का की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है, ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या क्यों कैसे की बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रश्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस सृष्टि में एक बात को फॉलो करने वाले बन जाएंगे। तो मतलब बाबा को ही हमने फॉलो करना है, आंखें बंद करके उनके कदमों पर कदम रखते जाओ। पर तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ चिंतन नहीं करें, चिंतन करना है, परंतु बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने जो किया है वो एक्यूरेट किया है, उसमें ज्यादा बुद्धि खर्च करने की जरूरत नहीं है। स्लोगन है, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो, सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। विशेष नोट है, सभी ब्रह्मावत्स 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक विशेष अंतर्मुखता की गुफा में बैठ योग तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा विशेष आकाश देने की सेवा करना जी। इस लक्ष्य से इस मास के पत्र पुष्प में जो अव्यक्त इशारे भेजे गए हैं वो पूरे जनवरी मास में मुरली के नीचे भी लिख रहे हैं। आप सभी इन पॉइंट्स पर विशेष मनन चिंतन करते हुए मनसा सेवा के अनुभवी बने। तो हमने ये भी मंथन करना है रोजाना, मुरली के साथ ही हम इस पॉइंट पर मंथन करेंगे, आप सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये विषय है जो बाबा ने दिया है नामानुसार कि हम रोजाना इस पहले मंथन करेंगे तभी सेवा कर सकेंगे। जब हमने मंथन नहीं किया होगा तो सेवा भी नहीं कर सकेंगे। ये पॉइंट दिया है कि अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। आप कौन है हम, अब टॉपिक क्या है, आप शांति दूत बच्चे कहां भी रहते चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझ कर चलो, जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे वे दूसरों को भी शांति और शक्ति की साकाश देते रहेंगे। कब दे सकते हैं साकाश, इस बात को यही मंथन है हमारा, आज का टॉपिक यही है, आप शांति दूत बच्चे। सबसे पहली बात हमें अपने आप को ये टाइटल दे देना है कि मैं शांति दूत आत्मा हूं। सारा दिन याद रखना है कि मैं शांति दूत आत्मा हूं, इसे रखना नहीं पड़े बुद्धि मेरे, बोलने की जरूरत नहीं है, हमारा देखना बोलना चलना सब ऐसे हो जाएगा। कहां भी रहते हम, चाहे कहीं भी हो, घर में है, ऑफिस में है, बाहर है, दुकान पर है, कहीं भी है, कहां भी रहते चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत कि मैंने सबको, प्रकृति को भी, पशु पक्षी को भी, आत्माओं को भी, जो भी मुझे मिलेंगे मैंने उनको शांति का अनुभव कराना है, ये समझ कर चलो। जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे वह दूसरों को भी शांति और शक्ति की साकाश देते रहेंगे। मेरा साकाश क्या देते रहेंगे, ऑटोमेटिक उनको पता लगता रहेगा ये वाक्य में शांत, ये बिल्कुल शांत, कुछ भी हो जाए ये हलचल में नहीं आते हैं। ये साकाश उन तक पहुंचता जाएगा, पर उनको कैश होगा, ये साकाश उनको कैश होगा कि हमें भी ऐसा बनना है। ये किसी को महसूस हो गया तो आपका साकाश हो गया, आपको आपका मैसेज उसके पास चला गया बिना बोले बिना कहे। तो ये हमें सारा दिन जहां भी हो, और फिर यही जो आज का हमारा अनुभव हो रहा है, जो मंथन चल रहा है, जब भी समय मिले, मतलब आपके पास बड़ा फिजिकल काम नहीं है, क्योंकि मनसा सेवा के लिए फिजिकल काम से हमें अलग करना होता है, चाहे 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी जो प्राप्त कर सकता है, अपने समय निकाल सकता है, जिसमें बुद्धि में कोई उथल पुथल ना हो, कोई काम ऐसा ना हो। बेस्ट होता है अमृत वेला, तब हमारे झमेले बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। उस समय सारे विश्व की आत्माओं को मैंने कैसे अपने जीवन में इसको अनुभव किया, वो अनुभव सर्व आत्माओं को शेयर करना है। और वो करेंगे खुद, ये याद रखना है। हम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम केवल अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो अनुभव आपने शेयर करना है कि कैसे मैंने आज सारा दिन इस शांति की शक्ति को कितना अपने अंदर धारण कर पाए, आप भी कर सकते हो। और आज आप उसे अनुभव करो और अगले दिन बैठकर वो सबके साथ शेयर करो, फिर अगले दिन का नया संकल्प ले लो, नया जो मतलब भेजा है हमारे लिए, तो उसका हमने मंथन करना है। तो हम यहां इस समय ये मंथन करेंगे, उसको समझेंगे, और उसके बाद सारा दिन हम उसको अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ करेंगे, और फिर वो विश्व की आत्माओं को अगले दिन सवेरे वो अनुभव शेयर करेंगे उनके साथ, ताकि वो भी उसे अपने जीवन में लाने के लिए पुरुषार्थ करें। ये बहाना है हमें पुरुषार्थ कराने का, बाबा की युक्तियां हैं हमसे पुरुषार्थ कराने की। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।